ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय दो श्लोक संख्या 65 पेज नंबर 98 प्रयास करेंगे हम श्लोक संख्या 61 तक कवर करेंगे। समय विषय दोहराइएगा। पेज नंबर 98 और श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय उच्यते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्दीरित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न जासा विषयस्य मतम न भिन्नम्। महाभारत वन पर इसमें कहा गया है किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर ये स्त्रोत रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओम ज्ञान चक्षुरस्मय श्री गुरुवे श्री चंद्रष्ट स्थापना स्वयं रूप बनाने तथा स्वतः वंदे हम श्री गुरु श्री श्री गुरु श्री गुरु सागर जातम संग्रहतम सजीव सागरित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादाम संग्रहता श्री शाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानु सुते देवी प्रणमामि हरि स्वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेषु मध्ये भक्तिवेदान्त स्वामिनि दिनानि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाणी पार्श्वती हरे कृष्ण। भगवद्गीता के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरे अध्याय का यह आवाज थोड़ी तेज और कहीं कम अपने आप ठीक है, कभी बहुत तेज हो रहा है कभी कम कर रहे हैं। सो दुखेशु अनुद्विग्न मन सुखेशु विगते स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की और शरणागति के बाद भगवान कृष्ण जो कि अब गुरु की भूमिका निभा रहे हैं वो अर्जुन को पहले ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, फिर उसके बाद कर्म ज्ञान कर्म योग का सिद्धांत उन्हें बताते हैं और उसके बाद फिर बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। और उसमें आगे चलकर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि में स्थित है यानी बुद्धि योग यानी भक्ति योग की ओर है, जिसका मन सदैव कृष्ण में लगा हुआ है, जिसका मन विचलित नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। और उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का मन जो है एक पूरी तरह से स्थिर होता है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुनि शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। तो पहले वो बता रहे हैं कि जो मुनि है उसका अर्थ क्या है, जो शुष्क चिंतन करता है, मेंटल स्पेकुलेशन। मुनि हमेशा कॉन्टेम्पलेशन कुछ चिंतन करता रहता है, कुछ नए की खोज कर रहा होता है। और प्रभुपाद इसमें साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि यदि एक मुनि का विचार दूसरे मुनि के विचार से मिल जाएगा तो फिर वो व्यक्ति मुनि नहीं कहलाएगा, यानी कि हर एक मुनि उसका जो विचार है वो यूनिक होगा, बिल्कुल अलग होगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो बता रहे हैं लेकिन जो स्थित धी यानी कि एक जो ऐसा मुनि जो स्थित धी है, स्थित धीर मुनि रुच्यते, जो कृष्ण कॉन्शियस मुनि है वो इस कंक्लूजन पर इस निर्णय पर आ चुका होता है कि कृष्ण वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण क्या है वही सब कुछ है। तो मुनि जो है कॉन्टेम्पलेशन चिंतन कर रहा होता है एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, लेकिन वो कभी भी लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जब हम स्थित धी मुनि की बात करते हैं तो ऐसा मुनि जो इस बात को समझ चुका है कि कृष्ण ही सब कुछ है और वो अपना जीवन अपने इंद्रियां वो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो ऐसे मुनि को स्थित धी मुनि कहा गया है। और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि हम यहां मुनि की बात कर रहे हैं, मुनि का मतलब एक शुद्ध भक्त। हम अपनी बात समझ के चले कि हम सभी इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हम सभी भगवान के शुद्ध भक्त बन सके, यानी मुनि की तरह रह सके। कैसे मुनि, स्थित धी मुनि।
जो ये समझ चुका हो कि कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण की सेवा के लिए ही हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ कृष्ण में निवेशित होना चाहिए, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इस तात्पर्य में बता रहे हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मन की, तो ऐसा भक्त उसके लक्षण क्या होते हैं कि सुख और दुख दोनों ही स्थिति में वो कैसा रहता है, संभाव रहता है, वो विचलित नहीं होता है। उसके जीवन में जब दुख आते हैं, त्रिताप की बात हो रही है, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, जब कष्ट जीवन में आते हैं, उन कष्टों से ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपने रास्ते पर, उसका जो रास्ता है कृष्ण भक्ति का रास्ता, उस पर वह हमेशा बना रहता है। जीवन में कभी कोई परेशानी आए या कभी अच्छे दिन आए, इनसे वो कभी भी विचलित नहीं होता है। तो पहला लक्षण उसका ये है। और फिर क्या बता रहे हैं, वीत राग भय क्रोध, कि ऐसा व्यक्ति राग भय और क्रोध से फ्री होता है, मुक्त होता है। राग का मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट, आसक्ति, उनमें ऐसे व्यक्ति में आसक्ति नहीं होती विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रह जाती। अब यहां पर जो आसक्ति है, आसक्ति प्रभुपाद इस तात्पर्य बता रहे हैं कि आसक्ति का अर्थ क्या है और अनासक्ति का अर्थ क्या है। आसक्ति का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब हम वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई वस्तु हो, अगर हम अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उस वस्तु या व्यक्ति में आसक्त हैं, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम उससे दूर जाने पर कष्ट होता है। हाँ, जैसे परिवार में आसक्त हो जाते हैं, पति पत्नी बच्चे परिवार प्रॉपर्टी, और जब हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ने में कष्ट होता है, तो इसका मतलब है कि हम उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में आसक्त हैं। अनासक्ति का अर्थ क्या है कि वो सब कुछ हमारे जीवन में है, परिवार है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन अनासक्त है। अनासक्त का मतलब जब हम जानते हैं कि वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो कृष्ण के लिए है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के भोग के लिए है, तो इसे कहते हैं अनासक्ति, युक्त वैराग्य कहते हैं इसे। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम जो वस्तु, जो व्यक्ति हमारे जीवन में है, उस वस्तु या उस व्यक्ति को हम त्याग कर चले जाएं, छोड़कर चले जाएं, उसे आसक्त, अनासक्ति नहीं कहते हैं। तो अनासक्ति का अर्थ है कि हम इस बात को समझ लें, इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि वो वस्तु, वो व्यक्ति कृष्ण का है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। तो पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है, वो व्यक्ति अनासक्त होता है वस्तुओं में और व्यक्तियों से अनासक्त होता है। फिर क्या कहते हैं, भय, वीत, वीत मीन्स मुक्त होता है राग भय और क्रोध से। तो राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, भय, भय यानी फियरफुल कंडीशन, भयभीत होना। तो भय कब होता है हमें दुख, यानी कि हम भयभीत कब होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसके खो जाने का भय हमें हमेशा बना रहता है। अपने आप में भी, हमारा अपना जीवन है नहीं है, इसको खो देने का भय हमेशा बना रहता है। लेकिन जब आसक्ति नहीं होगी विषयों में, तो ये भय भी नहीं रह जाएगा। तो जो व्यक्ति स्थित धी है, जिसका मन स्थिर है, भगवान में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती है। ऐसे व्यक्ति का मन भय से मुक्त हो जाता है, कोई किसी भी प्रकार का भय उसके जीवन में नहीं रह जाता है। वो भविष्य की चिंता नहीं करता है कि क्या होगा आगे चलकर, इन बातों की चिंता वो नहीं करता है, भय नहीं होगा। और फिर क्या कह रहे हैं, क्रोध, ऐसा व्यक्ति क्रोध भी नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा गुस्सा, क्योंकि जब व्यक्ति को किसी वस्तु में आसक्ति रही नहीं गई है, उसको भविष्य की चिंता ही नहीं है, तो वो सिर्फ अपने कर्म पथ पर स्थित रहता है, कृष्ण भावना भावित रहते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सिर्फ वो कर्म करता है। उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि कर्म का परिणाम क्या होगा या उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब रिजल्ट की चिंता नहीं होगी, चाहे हम हारें चाहे जीते, तो क्रोध आने की कोई बात रही नहीं जाती है। हमें पता है सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्रोध भी नहीं करता है। तो ये एक भक्त का लक्षण है, एक स्थित धीय मुनि का लक्षण है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती है, वो किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है और वो किसी पर क्रोध नहीं करता है। और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट श्लोक में एक लक्षण बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यानी उसके जीवन में चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही स्थितियों में समभाव, और वो हमेशा, जैसे प्रभुपाद एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं समाधि, समाधि का अर्थ है निरंतर कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण को याद रखना। तो ऐसा व्यक्ति समाधि में होता है, उसके जीवन में कोई शुभ घड़ी है अशुभ घड़ी है इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसका संबंध किससे होता है, कृष्ण से, जो सर्व मंगलमय है। तो जो सर्व मंगलमय है, जब वो कृष्ण से संबंधित है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी होगा वो मंगलमय होगा। वो ये बात को समझता है, जानता है कि उसके जीवन में जो कि हमें देखने में लग सकता है कि वो दुख के दिन है, अच्छे दिन है या बुरे दिन है, लेकिन वो जानता है कि ये सब कुछ कृष्ण की कृपा है। वो हमारी समझ से अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन कृष्ण जो सर्व हम सभी के बेस्ट वेलविशर है, सुहृदं सर्वभूतानां, तो वो हमारे जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो आज हमारे जीवन में जो बुरी घड़ी हमें देखने को लग सकती है, हमें समझ, हमारी समझ में वो हो सकता है कि वो बुरा समय चल रहा हो, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि वो अपने भक्त के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और आगे आने वाला समय अच्छा होगा। तो इस बात को जो भक्त है वो जानते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, जो मन है, वो पूरी तरह से संयमित होती है, नियंत्रित होती है। और कैसे नियंत्रित होती है वो बता रहे हैं इसके नेक्स्ट श्लोक में। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो इंद्रियां और मन, उन पर नियंत्रण किस तरह से रखता है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में उदाहरण बताते हैं। एक तो कछुए का उदाहरण देते हैं कि कछुआ क्या करता है, उसकी इंद्रियां जब उसको आवश्यकता होती है तब वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, और जब उन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती है तो वो अपनी खोल में उसे भीतर समेट लेता है। तो उसी तरह से जो स्थित धीय मुनि है, जो भक्त है, अपनी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की सेवा में ही लगाता है, इस तरह से वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। और एक उदाहरण और देते हैं प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कि जैसे एक सपेरा क्या करता है, अपनी सांप, जो सांप है उसके पास, वो सांप हमेशा बाहर निकल कर जाना चाहता है, उसके पिटारे से या जैसे भी बाहर निकल कर जाना चाहता है, लेकिन सपेरा क्या करता है, वो उसको कंट्रोल में रखता है, उसको हमेशा बंद रखता है, जरूरत आने पर उसे बाहर आने देता है, नहीं तो उसे फिर से बंद कर देता है। तो वैसे ही जो भक्त है, जो स्थित धी मुनि है, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं कि ये इंद्रियां, क्योंकि ये इंद्रियां अपने विषयों में आसक्त होंगी ही होंगी, अगर हम इंद्रियों को छूट देंगे तो इंद्रियों के जो विषय हैं वो उनमें आसक्त होंगी ही होंगी। हमारी इंद्रियां जैसे हमारी आंखें हैं, वो हमेशा सुंदर देखना चाहेंगी, कुछ दृश्य देखना चाहेंगी, आकर्षित होंगी। कान है तो कुछ सुंदर संगीत सुनना चाहेंगी, उनमें आसक्त होंगी। जिह्वा ये स्वाद पाना चाहेगी, त्वचा स्पर्श करना चाहेगी। तो ये इंद्रियां जैसे ही इनको हम खुली छूट देंगे, ये अपने विषयों की ओर आकर्षित होंगी, और जब ये विषयों से आसक्त होंगी, विषयों को अगर हम खुली छूट दे देंगे इनको कि जहां चाहे आंखें जो देखना चाहती हैं उसे देखने दो, कान जो सुनना चाहते हैं उसे सुनने दो, जैसा मन चाहता है वैसा करने दो, तो क्या होगा, ये अपने विषयों में बहुत ही आसक्त हो जाएंगे, और उस कंडीशन में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो श्लोक संख्या 60 है उसमें यद तो ही अभी कौन थे पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रबलं प्रसभं मनः। क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। साधारण व्यक्ति के मन को नहीं, विवेकी व्यक्ति जो इस रास्ते पर चल रहा है, जो तपस्या कर रहा है अपने मन और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र मुनि का, जो एक योगी है, मुनि है, अपने मन और इंद्रियों को तपस्या के माध्यम से उन्होंने नियंत्रित किया हुआ है। लेकिन ऐसे मुनि, ऐसे योगी का मन भी विचलित हो जाता है सिर्फ मेनका के एंकल बेल्स की आवाज सुनकर विचलित हो जाते हैं। और वही प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं वो अम्बरीश महाराज का, कि अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है। दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत रखा था, और दुर्वासा मुनि आते हैं वहां पर, और मुनि जब आए हुए हैं तो एक राजा का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है भक्त का, कि वो ऐसे योगी मुनि संत जब आते हैं तो उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें। और अम्बरीश महाराज ने ऐसा ही किया। तो उस समय में जब दुर्वासा मुनि आए और उनके लिए जब उनके साथ 10,000 उनके शिष्य, क्योंकि दुर्वासा मुनि कभी भी अकेले नहीं चलते थे, और ऐसे समय में दुर्वासा मुनि को उनको जब भोग के लिए उन्होंने प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पहले स्नान करने चले गए नदी पर, कि पहले वो स्नान करके आएंगे तब जाके वो प्रसाद। और ऐसे में अम्बरीश महाराज जो कि व्रत का पालन कर रहे थे, निर्जल व्रत का पालन कर रहे थे वो एकादशी व्रत का, और ये एकादशी व्रत का पालन ऐसा होता है कि जब व्रत का समय पूरा हो चुका है, पारण का समय हो चुका है, तो उस समय में व्रत खोलना होता है, और नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और दूसरा अपराध ये भी है कि अगर कोई संत मुनि योगी आपके घर में कोई साधु आया है, उस साधु का सत्कार किए बगैर या उसको प्रसाद दिए बगैर अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो भी अपराध है। तो अब यहां पर दो कंडीशन है, एक तरफ साधु का अपराध करना है और दूसरी तरफ जो एकादशी व्रत का पालन, वो भी चतुर्मास जो कि आने वाला है उस चतुर्मास का पालन कर रहे थे अम्बरीश महाराज। तो द्वादशी व्रत, द्वादशी का समय, पारण का समय हो चुका है, तो उस व्रत को भी खोलना है, एकादशी व्रत को भी पारण करना है। तो ऐसे में उन्होंने दूसरे साधु संतों से जो उनके पास ब्राह्मण थे, उन्होंने संपर्क उनसे कंसल्ट किया, परामर्श किया कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तब दूसरे ब्राह्मणों के परामर्श से उन्होंने इस निर्णय पर वो निकले पहुंचे कि यदि कोई निर्जल व्रत का पालन कर रहा है, कोई व्रत का पालन कर रहा है निर्जल बिना पानी के, तो ऐसा व्यक्ति यदि पानी पी लेता है तो उसके व्रत का पारण हो जाता है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो उसने कुछ खाया भी नहीं, तो बिना खाए व्रत का पारण भी हो गया। तो उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श करके एक बूंद पानी उन्होंने ले लिया, और इस बात का पता, क्योंकि जो दुर्वासा मुनि है बहुत ही गुस्से वाले मुनि है और बहुत ही सिद्ध है, उन्होंने ध्यान से पता लगा लिया कि अम्बरीश महाराज ने मेरा सत्कार किए बगैर पहले ही उन्होंने अपने व्रत का पारण कर लिया। तो इससे बहुत क्रोधित हुए और उस क्रोध में आकर उन्होंने अम्बरीश महाराज को बहुत सी बातें कही कि तुम कैसे राजा हो, तुम जो शूद्र हो, तुम राजा अपने आप को भक्त कहते हो, बहुत सारी बातें उन्होंने खड़ी कोटी कही। लेकिन अम्बरीश महाराज जो एक शुद्ध भक्त है, जो स्थित धी है, जिसका मन पूरी तरह से कृष्ण में स्थिर है, जो आसक्ति से दूर है, जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, जिसको जो पूरी तरह से क्रोध नहीं करता, किसी भी तरह से उसके हृदय पे किसी के लिए क्रोध ही नहीं है, तो ऐसे शुद्ध भक्त। अब दुर्वासा मुनि क्रोध कर रहे हैं लेकिन अम्बरीश महाराज एकदम अपनी स्थिति में वैसे ही बने हुए, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं, और इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं दुर्वासा मुनि कि अपनी शक्ति से वो एक ऐसा राक्षस पैदा करते हैं जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन भगवान है, अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं, तो किस तरह से भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा जो कि उस जो दुर्वासा मुनि के ही पीछे दुर्वासा मुनि को दंड देने के लिए जो है आगे बढ़ जाए। और दुर्वासा मुनि अपनी रक्षा के लिए हर स्थान पर गए, कभी शिव जी के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, हर स्थान पर गए, लेकिन कहीं उनकी सुरक्षा नहीं हुई। फाइनली वो भगवान के कहने पर वो अम्बरीश महाराज के पास उनके शरण में आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जहां पर दुर्वासा मुनि, जो इतने बड़े योगी मुनि, इतनी तपस्या से उन्होंने अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित किया हुआ है, केवल क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण अपने इंद्रियों पर नियंत्रण को खो बैठे, और दूसरी तरफ एक भक्त अम्बरीश महाराज जो बहुत बड़े मुनि योगी नहीं थे, एक पारिवारिक जीवन जीने वाले एक राजा थे, लेकिन किस तरह से उनका मन पूरी तरह से स्थिर है, नियंत्रित है। तो यहाँ पर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का जो उपाय बताया गया यहाँ पर इसके पहले के श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जन रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देवधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य होता है, पहला लक्ष्य, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का ये जो उपाय है जिसमें अष्टांग योग की विधि दी गई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो ये अष्टांग योग की पद्धति है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो विधि है वो किसके लिए है, किसके लिए, अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए, अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए। तो ये कुछ नियम हैं जिन नियमों का हमें पालन करना होता है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। वैसे ही कुछ और भी नियम दिए गए हैं हमें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे लिए चार नियमों का पालन दिया जाता है कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री का संबंध नहीं करना है। ये शास्त्रों में ऐसे कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ नियम जो करने योग्य हैं, कुछ नियम जो जिनसे हमें बचना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करने के लिए किसे कहा गया है, जो अल्प ज्ञानी है, यानी कि अभी हम सभी की स्थिति ऐसी है जहां पर हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, तब हम धीरे धीरे, लेकिन जब हम उन्नत अवस्था में होंगे, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है उन्नत अवस्था में है, फिर उसके लिए ये अष्टांग योग की विधि, इनकी, इन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। कहने का अर्थ है कि वो व्यक्ति बहुत ही उन्नत अवस्था में आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का मन हर क्षण हर परिस्थिति में कृष्ण में आसक्त होता है। और यही है भक्ति योग, जो कि सर्वोच्च विधि है। योग पद्धति की बात करें तो भक्ति योग, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, ये सर्वोत्तम योग पद्धति है, जिसमें रहते हुए व्यक्ति बहुत ही सरल नियमों का पालन करते हुए अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जबकि इतने बड़े बड़े मुनि और योगी नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति योग ये सरलतम विधि बताई गई है इस मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, कृष्ण भक्ति। और इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, स्पेशली प्रहलाद महाराज जब अपने क्लासमेट्स जब अपने जो सहपाठी थे उनको भी वो क्या शिक्षा दे रहे थे, वो बता रहे हैं कि ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से इस मनुष्य जीवन में आकर व्यक्ति अनेकों प्रकार की आसक्ति में लग जाता है, कितनी प्रकार की आसक्तियां हैं जिसमें उलझ कर रह जाता है। और प्रहलाद महाराज उनको शिक्षा देते हुए कहते हैं, इस मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में बताते हैं, ये कितना दुर्लभ जीवन है और ये जीवन मेरा किस लिए है, कृष्ण भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन हमारे मार्ग में तरह तरह की कठिनाइयां हैं, तरह तरह की बाधाएं हैं। वर्ण और आश्रम के बारे में बताते हैं कि किस तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, लेकिन इन सभी आश्रमों में सबसे ज्यादा अगर हम देखें आसक्ति किस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, सबसे ज्यादा आसक्ति गृहस्थ आश्रम में है। क्यों? वो कहते हैं कि भला कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा कर रही है, भला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी में आसक्त क्यों न हो। पत्नी जो पति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसको संतुष्ट करती है, दिन रात उसका ख्याल रखती है, भला पति की आसक्ति ऐसी पत्नी में क्यों नहीं होगी, और क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति की आसक्ति अब उसके पुत्र में होगी, उसके संतान में होगी। क्योंकि जब संतान तोतली बोली से, जब वो तोतली बोली बोलता है तो उतनी मधुर उसकी आवाज होती है, वो सुनना कितना अच्छा लगता है, कि व्यक्ति आसक्त हो जाएगा, बहुत ही नेचुरल है इस गृहस्थ जीवन में। हम छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं ना मम्मी पापा बोलते हुए, जब वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत ही स्वीट, बहुत मधुर लगता है, हम बार बार सुनना चाहते हैं, तो बहुत ही नेचुरल है कि उसमें आसक्त हो जाए हम। और वो फिर कहते हैं कि बच्चों की बात ही नहीं, अगर हम बच्चों की बात न करें, जो घर में नौकर चाकर हैं, जो दिन रात साफ सफाई करते हैं, सेवा करते हैं, उन नौकर चाकरों में भी हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, हम उन्हें भी दुखी नहीं देख सकते हैं, उनका भी हम ख्याल रखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, मनुष्य योनि को अगर हम छोड़ भी दें, वो कहते हैं घर में जो पेट है, बर्ड्स, डॉग, हम पेट्स रखते हैं घर में, पशु जो पालतू पशु होते हैं, उनके प्रति भी हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हम उनको दूर नहीं रख सकते हैं, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वैसे ये आसक्ति बहुत ही स्वाभाविक है। और बताते हैं प्रहलाद महाराज कि ये मनुष्य जीवन जिसकी मैक्सिमम एज, जो उम्र है, वो कितनी है, 100 वर्ष की है। और 100 वर्ष में से जो 50 वर्ष की आयु है वो व्यक्ति किसमें लगा देता है, सोने में। 12 घंटे वो कुछ नहीं करता है, वो 12 घंटे यानी 50% ऑफ लाइफ, 50% जीवन का व्यक्ति सोने में लगा देता है। और फिर कहते हैं कि 10 वर्ष की आयु जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सिर्फ आश्चर्यचकित होकर अपने आसपास के वातावरण में सिर्फ देखता रहता है कि ये हो क्या रहा है, उसको कुछ समझ नहीं होती, कुछ पता नहीं होता है उसे। और इस तरह से आश्चर्यचकित रहते हुए वो 10 वर्ष की आयु गंवा देता है। और फिर कहते हैं कि वो 10 वर्ष की आयु खेल कूद में गंवा देता है। कितना बचा, 70 ईयर्स गॉन। अगर हम 100 वर्ष मानकर चले कि 100 वर्ष की आयु हमारी है, जबकि 100 वर्ष भी हमारे हाथ में नहीं है, तो 100 वर्ष की आयु में 70 ईयर्स सिर्फ सोने में और खेल कूद में निकल गया। फिर वो कहते हैं कि जब वो थोड़ा सा समझदार होता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है, तो उसकी आसक्ति किसमें आ जाती है, पैसा कमाने। और प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट पास करते हैं, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति की आसक्ति पैसों में हो जाती है, जब वो पैसा कमाने में दिन रात वो मेहनत करता है, उसको लगता है कि सब कुछ पैसा है, तो स्टेटमेंट है मनी इज स्वीटर देन हनी। ऐसे व्यक्ति को ये लगता है कि ये पैसा ही सब कुछ है, उसके जीवन की सारी समस्याएं, सारा दुख, सब कुछ कैसे समाप्त होगा, पैसे से समाप्त होगा। और जबकि भगवद गीता पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हमने अर्जुन को देखा, जब अर्जुन विचलित थे, इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, पहले अध्याय में वो कहते हैं कि तीनों लोगों का साम्राज्य भी मेरे इस दुख को समाप्त नहीं कर सकता है। उनके सामने भी वही भौतिक समस्याएं थी जो हम सभी के सामने आती हैं, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम किस पर निर्भर होते हैं, हमारा जो हम जो शेल्टर लेते हैं वो लेते हैं अपने रिश्तों का, अपने मित्रों का, पैसों का, प्रॉपर्टी का, हम ये सोचते हैं कि यही सब कुछ हमें बचाएंगी। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, तीनों लोगों का साम्राज्य मेरे इस दुख को दूर नहीं कर सकता है। और प्रहलाद महाराज यह बता रहे हैं कि किस तरह से जब व्यक्ति की आसक्ति पैसों में हो जाती है तो वो दिन रात से पैसों कमाने में लग जाता है। और क्यों कमाता है, पहले तो अपने लिए, फिर जिस जो उसकी आसक्ति है उसकी पत्नी में, उसके बच्चों में, उसके नौकर चाकरों में, पेट्स में, परिवार में, प्रॉपर्टी में। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जब व्यक्ति इतने पैसों से अपने घर के अंदर सुंदर सुंदर वस्तुएं खरीद कर लाता है, अपने सुख सुविधा के सामान खरीद कर लाता है, उसको सजाता है, संवारता है, तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उसमें, वो वस्तु खराब हो जाए, टूट जाए, कोई चोर चुरा कर ले जाए, बहुत दुख होता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम आसक्त होंगे वस्तुओं में, उस वस्तु के दूर जाने पर, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, उस वस्तु के दूर जाने पर, उस व्यक्ति के दूर जाने पर हमारे जीवन में उतना ही कष्ट आता है, उतना ही दुख आता है। तो परिवार में आसक्ति बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है और होगा वो। और वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हमारा ये जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है वो किसमें चला गया, परिवार को संभालने संवारने में, बच्चों में। और अब जो जीवन का समय बचा है वो कैसा समय बचा है, कितने साल, एटलीस्ट 20 ईयर्स तो हम पैसा कमाते ही हैं, आज तो रिटायरमेंट के बाद भी हम अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अब जो समय जीवन का बचा है उसमें तो अपने भौतिक कार्य करने भी मुश्किल हो जाते हैं, अपना दिन जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वृद्धावस्था। तो पूरा मनुष्य जीवन जो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जो भगवान की भक्ति के लिए मिला है, जो इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम जाने के लिए मिला है, उस जीवन को हम व्यर्थ ही खेल कूद, पैसा कमाने और परिवार में। तो बताते हैं कि ये जीवन कृष्ण भक्ति के लिए मिला है, हमें भगवान की भक्ति में अपने समय को लगाना चाहिए। तो और भक्ति करने के लिए सबसे पहले अनासक्त होना है अपनी आसक्ति को, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर हम जिस अनासक्ति की बात कर रहे हैं वो अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अब हम अपने परिवार को छोड़ देंगे या अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे या हम एक सुंदर अच्छे घर में नहीं रहेंगे। यहां पर जिस अनासक्ति की बात की जा रही है प्रभुपाद उसे युक्त वैराग्य कहते हैं कि वो सब कुछ हमारे जीवन में कृष्ण कृपा से सब कुछ होगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है उसे स्वीकार करना है। अगर परिवार हमें कृष्ण ने परिवार दिया है, प्रॉपर्टी दी है, धन दिया है, तो वो हमें समझना है कि ये हमारी अपनी शक्ति से नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है और उसको कृष्ण की सेवा में ही लगाना है, उस परिवार की सेवा में लगाना है जो कृष्ण भक्ति में मेरा सहयोग मुझे सहयोग दे रहा है या वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। और ज्यादा केयरफुल और ज्यादा सिंसियर होना है। कई लोग कहते हैं भक्ति जीवन, भक्ति का जीवन मतलब वैराग्य का जीवन जिसमें व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं करता, अपनी पत्नी की चिंता नहीं करता, अपनी संतान की चिंता नहीं करता, तो वो वैराग्य उसे फल्गु वैराग्य कहा गया है। प्रभुपाद कहते हैं फल्गु वैराग्य, इस तरह के जो वैराग्य है, क्योंकि ये जो श्लोक है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जन रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। प्रभुपाद उदाहरण में कह रहे हैं कि इस तरह का जो डिटैचमेंट है वैराग्य है वो कैसा होगा। वो कह रहे हैं जैसे एक डॉक्टर, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है शुगर पेशेंट, अब बीमार व्यक्ति को कोई डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें मिठाई नहीं खानी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मिठाई को छोड़ देता है। लेकिन इसे वास्तविक वैराग्य नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति ने मिठाई खाना बंद कर दिया है लेकिन मिठाई खाने की उसकी जो इच्छा है वो अभी भी बनी हुई है। तो इस तरह का जो वैराग्य है वो वैराग्य नहीं कहलाता। तो कोई व्यक्ति सोचे कि हाँ हमने भक्ति सीख ली, भक्ति का मतलब है परिवार से दूर, क्योंकि परिवार बहुत ही आसक्ति वाला जीवन है, तो परिवार को छोड़ देना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए, तो ये वास्तविक वैराग्य नहीं। क्योंकि व्यक्ति भले ही वो परिवार से दूर हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए, लेकिन जो आसक्ति है मन में वो चिंतन चलता रहेगा। इसलिए वास्तविक वैराग्य की आवश्यकता है और वो वास्तविक वैराग्य आएगी जब हम भक्ति योग पर चलेंगे। भक्ति योग यानी जिस तरह से ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये फैसिलिटी जो श्री प्रभुपाद ने हम सभी को दी है कि जब हम इस कृष्ण कॉन्शियसनेस संघ में आते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित संघ में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। भक्तों के संग में आकर हम क्या करते हैं, हम कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं। इससे कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति प्रेम बढ़ता चला जाता है। कुछ नियमों का पालन करते हैं, जो नियम हमने बताए कि चार नियम दिए गए हैं, छोटे छोटे नियम, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, अवैध स्त्री का संबंध नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है, निरंतर नाम जप करना है। तो ये कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं, जब हम इन नियमों का पालन करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे, सुनेंगे, तो ऐसा करने से भगवान के प्रति हमारा विश्वास, हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारी आसक्ति बढ़ेगी। मंदिर में प्रोग्राम है तो मंदिर के प्रोग्राम्स में आना, यानी कि भगवान की अर्चना विग्रह का दर्शन करना, दर्शन करने मात्र से हमारी आसक्ति दूर चली जाती है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम भगवान की सेवा में जो कुछ भी लगाते हैं उसके प्रति हमारी आसक्ति, मतलब ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर हम अनासक्त होना चाहते हैं जिस भी वस्तु या व्यक्ति से, उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा दें, ऑटोमेटिकली हम डिटैच हो जाएंगे, अनासक्त हो जाएंगे। इसको कैसे समझेंगे? अब जैसे हम आचार्य बताते हैं कि जब हम भगवान के लिए सुंदर कपड़े बनाते हैं तो अपने लिए सुंदर वस्त्र पहनने की जो इच्छा है वो दूर चली जाती है। बहुत ही नेचुरल है, जो लोग डीटी वर्शिप करते हैं उनको इस बात का एहसास होगा, अनुभव होगा कि जब वो भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो उनको अपने लिए सुंदर वस्त्र पहनने की इच्छा नहीं रह जाती है। पहनते हैं वो साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अंदर से जो इच्छा है अपने आप को सजाने संवारने की, जब तक भगवान में आसक्ति नहीं होगी हम मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को सजाते संवारते रहेंगे, लेकिन जिस दिन भगवान की सुंदरता आंखों में बस जाएगी, जब हम भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाने के लिए प्रयास करेंगे, तो अपने लिए सुंदर वस्त्र पहनने की आसक्ति दूर चली जाएगी। जब भगवान को हम सुंदर भोग बनाना चाहेंगे, उनके लिए भोग बना तैयार करेंगे, तो अपने लिए जो हम अभी तक कुकिंग कर रहे हैं बनाने की, आज हम ये खाएंगे आज हम वो खाएंगे, वो डिटैचमेंट आसक्ति धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको करने में हम विरक्त भी हो जाएंगे और कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आने वाली। नेचुरल प्रोसेस कि हम भगवान के लिए भोग बनाएं, अपने अपने जीवन का स्वाद आसक्ति दूर चली जाएगी। खाने को बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं कि अब हमारा खाना बंद हो जाएगा, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे प्रसाद भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद हमें पाने को मिलता है, लेकिन जो डिटैचमेंट मीन्स इच्छा नहीं रह जाएगी, जितना मिल गया संतोष ऐसी इच्छा हो जाएगी। जो धन हमारे पास है, उस धन का प्रयोग जो हम अभी अपनी इंद्रिय तृप्ति में कर रहे थे, अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे थे, जिस दिन हम कृष्ण के एंजॉयमेंट में लगाना शुरू कर देंगे कि कृष्ण के लिए हम कैसे इस धन का उपयोग करेंगे, कैसे हम उनको बेहतर वस्त्र पहनाएं, कैसे उनके जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस में हम कैसे अपना योगदान दें कि कृष्ण के लिए ये जो त्योहार या ये फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है उसको सबसे बेहतर फेस्टिवल बना दें, तो हमारी धन के प्रति जो आसक्ति है वो दूर होती चली जाएगी। और ऐसे में भक्तों का अनुभव भी देखा गया है कि जितने खुले दिल से हम भगवान की भक्ति में धन को लगाते हैं, उतना ही ज्यादा धन हमारे जीवन में आता भी है। भगवान पहले हमारी इच्छा देखते हैं और साथ साथ हम देखेंगे कि वो चीज, जिस चीज को हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे, वो चीज कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में आने लगती है। जब हम भगवान में प्रेम को समर्पित करते हैं, अपने प्रेम लगाते हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रेम बढ़ जाता है, बहुत से सभी भक्त हमें प्रेम करने लगते हैं। लेकिन जब तक ये स्वार्थ, ये जो जो हमारी जो मेंटेलिटी है, जो मन है, इंद्रियां है, जब तक अपने लिए इच्छा करती रहेगी कि वो इंद्रियां मुझे सुख देनी चाहिए, जो मुझसे जुड़े जो लोग हैं वो मुझे सुख देने चाहिए, तब तक ये भौतिक जगत का जो स्वभाव है वो कष्ट हमारे जीवन में आती ही रहेगी, उससे हम दूर नहीं हो पाएंगे। कृष्ण के लिए कष्ट लेंगे तो वो कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाएगा, यानी कि जो कुछ भी हमारे जीवन में है या जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है उसको हम कृष्ण के लिए लगा दें तो वो हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। तो यहां पर उसी वैराग्य की बात कर रहे हैं गोपाल, विषय अभिनिवर्तन थे कि ये जो आसक्ति जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वस्तुओं में, व्यक्ति में, पशुओं में हमारी जो आसक्ति है वो कैसे दूर होगी, अष्टांग योग की विधि से नहीं, वो विधि हमारे लिए नहीं है, हम योग्य नहीं है उसके लिए। तो जो विधि बताई गई है वो परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब ऊंचा स्वाद हमारे जीवन में होगा तो जो नीचे का स्वाद है, जो स्वाद हम अभी अपनी इंद्रियों में ले रहे हैं, वो स्वाद दूर चला जाएगा। और वो ऊंचा स्वाद क्या है, वो ऊंचा स्वाद है कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम जब बढ़ेगा, कृष्ण में जब आसक्ति उत्पन्न होगी, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत के प्रति आसक्ति दूर हो जाएगी। और श्री रूप गोस्वामी कहते भी है ना कि वो कहते हैं कि वृंदावन में केशी घाट पर मत जाना, और वहां अगर जाना भी तो गोविंद के दर्शन मत करना, नहीं तो क्या होगा, गोविंद का दर्शन कर लोगे तो जो तुम्हारी आसक्ति है परिवार में, संतान में, वो सब दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो भक्ति योग ये सरल उपाय है अनासक्त होने के लिए, अपने मन और इंद्रियों को भगवान में निवेशित करने के लिए, भगवान में लगाने के लिए सरल उपाय है। तो हमें इस विधि का पालन करना है, और उपाय हम सभी को पता है, भक्तों के संग में आना, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना, कीर्तन के समय यहाँ कोई नहीं होता है, माता जी अकेले कीर्तन कर रही होती है। तो हम ये ना सोचें कि प्रोग्राम का टाइम, यानी जब लेक्चर, उसमें भी जब मंगलाचरण पूरा हो जाएगा तब हम पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्साह, क्योंकि जब हम ये सोच के चलते हैं कि 10:30 10:30 बजे समय है प्रोग्राम का, तो 10:30 बजे सभी भक्त यहाँ पर पहुंचने का प्रयास करें। अब कभी कभी हम भी सोचते भी हैं कि हम इंतजार न करें, अपने टाइम पे हम सब शुरू कर दें, लेकिन अब भक्त नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर किसके लिए सब कुछ। तो आप सभी को एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन की बात है, रविवार का दिन है, तो 10:30 बजे अपना समय निकाल कर यहाँ पर आ जाए ताकि कीर्तन में आनंद दें, और ये कीर्तन ही, ये हरि नाम ही, वास्तव में देखा जाए तो हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, ये शास्त्रों का अध्ययन सब कुछ, ये सब सिर्फ माध्यम है। जो लक्ष्य है वो यही है, हरि नाम लेना, हरि नाम में रुचि को बढ़ाना। तो उसके लिए अगर हम समय पर आएंगे, कीर्तन करेंगे, फिर कथा का श्रवण करेंगे, तो ये कथा सुनना हमारे इस हरि नाम में रुचि को बढ़ाएगा, हमारी श्रद्धा विश्वास को बढ़ाएगा, ताकि हम ये नाम ले सकें। तो इसमें एक सुंदर उदाहरण कैसे ये 61 नंबर जो श्लोक है इसके तात्पर्य में, अभी हम जिससे अम्बरीश महाराज की चर्चा कर रहे थे, तो बता रहे हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज कैसे अपना जीवन जीते थे, कैसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाए। इसका दिया है, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थिर कर लिया। अपना मन कहां लगा दिया? भगवान के चरणों पर। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। वाणी का प्रयोग जो हम बोलते हैं, आप प्रजल्पा करेंगे, तो हम ज्यादातर समय अपना प्रजल्पा में इधर उधर की बातों में, लेकिन महाराज अम्बरीश अब कैसे अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं? भगवान के धाम की चर्चा करने में, उनका नाम गुण रूप, जब हम अपना डिस्कशन, अपना चर्चा का विषय भगवान के इन जो पांच टाइम्स है उनमें रखेंगे, तो हम वाणी पर नियंत्रण रख पाएंगे। अब नहीं तो ये वाणी बहुत ही, इस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, कानों का प्रयोग करना है भगवान की लीला सुनने में। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, मंदिर की व्यवस्था देखना, मंदिर की सफाई करना, भगवान का दर्शन करना, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, यानी भगवान भक्तों की सेवा करने में, अपने भक्त भक्तों को घर पे जो है बुलाना, सेवा करना, सत्कार करना, इससे हमें विशेष कृपा मिलती है। जब हम जो संत है, साधु है, जब हम इसे अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, कि हमें जो नाक को सुगंध चाहिए, तो भगवान को अर्पित जो इत्र है, जो पुष्प है, हम उनको जब स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो उससे इस इंद्रिय की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जब आप भगवान को अर्पित फूल को सूंघते हैं तो बहुत अलग अनुभव होगा आपको, स्पेशली जब तुलसी दल है, जब उसको हम पाते हैं, तो इस तरह के कार्य हैं भक्ति योग में, बहुत ही सरल कार्य। अपनी जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, तो अपनी जीव को नियंत्रित करना है तो भगवान को अर्पित तुलसी प्राप्त करने से, भगवान को अर्पित प्रसाद प्राप्त करने से हमारी जीवा नियंत्रित हो जाती है। और अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, जो तीर्थ स्थल है, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, इन स्थानों पर यात्रा करने से हमारी जो पांव है वो नियंत्रित होते हैं, या कहें कि हम उनको भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगाते हैं। उन स्थानों की यात्रा करने में, अच्छा, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। अपने सिर को यानी भगवान के नमस्कार करने में, और अपनी इच्छाओं को, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। हमारे अपनी बहुत सारी डिजायर्स होती है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा करना, ऐसा करना। जब अपने इस मन को जो इधर उधर हमें लेकर जा रहा है उसको जब हम भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा देंगे, तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा, सिर्फ ये प्रश्न पूछना, जब हम कोई कार्य करते हैं सिर्फ ये पूछ लेना कि इससे भगवान कितने प्रसन्न होंगे, भगवान को खुशी मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी। इस तरह के जब हम प्रश्न पूछेंगे, हर समय ये चिंतन में रहेगा, तो यानी भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे, तो मन पूरी तरह से नियंत्रित होगा। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। भगवान के शुद्ध भक्त, एक ऐसा भक्त मत पर शब्द यूज किया गया है। और जो आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि मत्पर का अर्थ क्या है, वो कहते हैं इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी हाँ, कि यानी कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही उनका मन लगा हुआ है, ऐसे शुद्ध भक्त। और कृष्ण भक्ति का उदाहरण वो कैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मनों को जला देते हैं। ये योग सूत्र है, योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान करके। तो ये यहां पर बता रहे हैं कि जिस तरह से जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारे वस्तुओं को जला देती है, उसी तरह से जब हमारे हृदय में कृष्ण होंगे, विष्णु जिनका अगर उनका हम ध्यान करेंगे, उनके लिए चिंतन करेंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे, तो हमारे हृदय में भी जो अलग अलग प्रकार के जो बल है वो सब नष्ट हो जाएंगे। काम सब नष्ट हो जाएंगे, फिर मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, स्थित थी होगी। ठीक है, तो हम सभी का लक्ष्य यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, अपने मन को स्थिर रखें। और अपने मन को स्थिर रखने के लिए हमने जो डिस्कस किया कि उसके लिए जितने भी प्रकार की विधि विधान शास्त्रों में वेदों में बताई गई हैं, उनमें जो सर्वोत्तम विधि है वो है भक्ति योग की विधि। और भक्ति योग की विधि बहुत ही सरल है, उसमें हम अपने प्रत्येक अंग को, मन को, बुद्धि को बहुत ही सरलता से, जिस तरह से महाराज अम्बरीश ने सेवा में लगा दिया कृष्ण की सेवा में, उसी तरह से हम भी भगवान ये भक्तों के संग में रहते हुए अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए, मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए, भक्ति में आगे बढ़ते हुए भगवत धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। सो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें जो स्पेशल गिफ्ट दिया है, ये ग्रंथ हमें दिए हैं। इन ग्रंथों को सिर्फ हमें वीकली बेसिस पे यहाँ आकर नहीं सुनना है, इसे हमें प्रयास करना है कि हम घर पर भी पढ़ सकें, सुन सकें। अगर हम खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई और सदस्य घर का पढ़े और हम आपसे सुने। और इसके लिए ये ग्रंथ घर पर होने भी आवश्यक है। तो हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पर छोटी बड़ी जो प्रभुपाद की बुक्स हैं वो यहाँ एक टेबल जो स्टॉल पीछे लगा हुआ है, और भी धीरे धीरे आगे कुछ वो सारे पेरिफेरनलिया, वो वस्तु जो भक्ति में सहायक है, जो भक्ति में हमें जरूरी है, माला है, कंठी माला और कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ रखना शुरू करेंगे, ताकि इनका लाभ उठाइए। ये ग्रंथ आप अपने घर लेकर जाएं, छोटी बड़ी जो भी किताबें हैं, और इनका अध्ययन कीजिए। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वाय ऑनियन गार्लिक, ये अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते, कृष्ण कॉन्शियसनेस या इस्कॉन वाले, ऐसे छोटे छोटे बुक्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि क्यों हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्यों प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से कीर्तन की सीढ़ी होंगी, जैसे घर में एक एटमॉस्फेयर, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना है तो आप घर में इस तरह की सीढ़ी चला सकते हैं जहां पर महामंत्र जो भक्तों ने गाए हैं वो महामंत्र कंटिन्यू चलता रहेगा। आप देखेंगे जब आप ये कीर्तन घर में चला दें और अपना जो कार्य है वो करते रहें, किचन में कुकिंग कर रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं, कुछ भी करते रहें, आप देखेंगे आपको उसमें थकान नहीं होगी। आप वो काम तब आप वास्तव में समझ पाएंगे कि ये घर भगवान का है, क्योंकि वातावरण ऐसा बन जाएगा। और जब वहां पे आप जो भी कार्य करेंगे घर के अंदर, वो आपको थकान नहीं पहुंचाएगा, आपको लगेगा कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम भगवान का नाम सुनते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए अगर अपने घर का कार्य करें तो वो हमारे मन को बिल्कुल भी इधर उधर विचलित नहीं होने देगा, हमेशा कृष्ण की याद हमारा जो है बनाए रखेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, धीरे धीरे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में उपदेशामृत कहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। ईशोपनिषद है, और ये प्रकृति के नियम, कई सारी किताबें आप स्टॉल पर देख सकते हैं। इस तरह से मृत्यु की पराजय, हम में से कोई नहीं चाहता कि मृत्यु वो हमें हमारे सामने आए, तो मृत्यु को कैसे डिफीट करना है, पराजय कैसे उसे पराजित करना है, इसके लिए सुंदर बुक है। तो आप बहुत ही कम दाम होते हैं, प्रिंट कॉस्ट होती है, बहुत ज्यादा मूल्य भी नहीं होता, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रंथ आपके घर पे हो, क्योंकि ये ग्रंथ ही हमारा सहारा होगी। हम इनसे, इनको पढ़ते हुए सुनते हुए हमेशा कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे, और जब कृष्ण हमारे पास होंगे तो विजय निश्चित है। ठीक है, ये श्री कृष्ण बुक है, इसमें ये श्रीमद् भागवतम अगर आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, जो भी उसमें 10th कैंटो जो श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो है, ये पूरा 10th कैंटो है जिसमें भगवान की सारी लीलाएं दी गई हैं, उनके अवतरण से इस धराधाम में जब वो अवतरित हुए और वो समय आ चुका है कृष्ण जन्माष्टमी। बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि कृष्ण की सेवा करने का मौका हमें बार बार मिलता है। अभी जगन्नाथ जी आए थे, उनका हमने वेलकम किया, पूरे तन मन धन से हमने मेहनत किया, सेवा की, और सबसे फेवरेट पास टाइम जो कृष्ण जन्म है वो 15 अगस्त, और उसके लिए सेलिब्रेशन जो भी हमें पूरे तन मन धन से इसमें लगना है। और बहुत अच्छा होगा कि यदि ये बुक आप इस महीने में प्रयास करें कि पढ़ें इसे, तो जो सेवा भाव है, कृष्ण प्रेम, वो क्योंकि समय भी उपयुक्त समय है, हालांकि भक्ति के लिए वो देशकाल परिस्थिति से बाधा उस बाधित नहीं होती है, बट फिर भी कुछ स्पेशल ओकेजन्स होती हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी से पहले अगर हम कृष्ण की अवतार की जो लीला है पूरी अगर पढ़ेंगे तो बहुत मन लगेगा इसमें, और फिर हम बहुत ही अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। तो कृष्ण की सेवा के लिए हमारी जो अपनी जो तैयारी है शुरू कर देनी है आज, ठीक है। हरे कृष्ण। तो समय ज्यादा हो गया है, माला करेंगे 12:30, एक माला का जप करते हैं सभी। तुलसी महारानी है, कमल प्रभु, तुलसी महारानी को हम बीच में रख सकते हैं, एक माला का जप कर लेते हैं। माला है सभी के पास, है माला, जिनके पास नहीं वो यहां से ले सकते हैं।